हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 398। इस बीच बात करते हुए स्वीटी ने सुनैना को सूप भी पिला दिया था, जो कि गीता ने उसे बनाकर लाकर वहां पर ही दे दिया था। अब तक आदित्य भी दवाई लेकर आया और उसने सारी दवाइयां निकालकर सुनैना को दी, और सुनैना ने चुपचाप उसके हाथ से वो दवाई ले ली, क्योंकि जैसा आदित्य उसे याद था, आदित्य उससे अब बहुत ही अलग नजर आ रहा है। और उसने खुद डेट चेक की तो जितना उसे लग रहा था उतनी तो डेट नहीं थी, काफी महीने आगे की डेट थी। इसका मतलब बहुत सारा टाइम बीत चुका है। इस बात पर तो सुनैना को पूरा भरोसा हो गया। लेकिन उस बीच क्या हुआ और वो सारा टाइम कैसे बीता, ये सब अभी भी सुनैना को याद नहीं है, इसलिए वो काफी गुमसुम सी खोई हुई वहां पर बैठी है। तभी आदित्य ने उससे कहा, क्या सोच रही हो, दवाई लो पहले, बाकी सब उसके बाद, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वो सब याद करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें सारी हमारी अच्छी यादें याद आ जाएंगी। आदित्य ने उसके हाथ में पकड़ी हुई दवाई की तरफ उसका ध्यान करते हुए कहा, तो सुनैना ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और स्वीटी ने उसे पानी का ग्लास उठा कर दिया, तो फिर सुनैना ने दवाई खा ली। उसके बाद वो उसी तरह से थोड़ी देर वहां पर बैठी रही, और तभी आदित्य सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे एग्जाम भी हैं 2 दिन बाद से, और तुम उसके लिए पढ़ भी रही थी, वो सब कुछ याद है तुम्हें या फिर वो भी भूल गई? सुनैना को इस वक्त एग्जाम या ऐसी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसने हैरानी से अपना सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखा और बोली, एग्जाम? इस टाइम तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होगा ना, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं एग्जाम में क्या लिखूंगी, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी। इतना बोलकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती हुई अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, और उसे इससे परेशान देखकर आदित्य ने उसकी कलाई अपने हाथ में पकड़ ली और फिर से उसे सामने सोफा पर बिठाता हुआ बोला, रिलैक्स, फेल नहीं होगी तुम, दवाई खा लो, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई तो तुम्हें वो सब कुछ भी याद रहेगा जो तुमने एग्जाम के लिए पढ़ा है, और अगर याद नहीं आया तो भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। उन दोनों को इस तरह एक साथ क्लोज होकर बात करते देख स्वीटी चुपचाप खड़ी होकर वहां से वापस अपने कमरे की तरफ खिसक ली। आदित्य के बोलने पर सुनैना चुपचाप वहां पर बैठ गई और उसकी बात ध्यान से सुनते हुए बोली, क्या? आदित्य उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ, और इस वक्त आदित्य का फोन उसकी पैंट की जेब में ही था, तो उसने पॉकेट से अपना फोन निकालते हुए स्क्रीन पर देखा और फिर सुनैना की तरफ देखा, जो कि अपनी बात का जवाब जानने के लिए काफी क्यूरियस लग रही है और रेस्टलेस भी। तो आदित्य ने वो फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना फोन वहीं पर साइड में टेबल पर रख दिया, और सुनैना का दूसरा हाथ भी अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें भले ही याद नहीं, लेकिन तुम फील कर सकती हो ना हमारे बीच का कनेक्शन, हमारा रिश्ता, और सबसे बड़ी बात भरोसा, वो करती हो ना तुम मुझ पर। आदित्य ने काफी ज्यादा सीरियस होकर ये सब कुछ पूछा तो सुनैना उससे नजरें चुराती हुई बोली, ये सब क्या बोल रहे हो तुम, और हमारा कोई रिश्ता? मुझे कुछ भी याद नहीं है तो फिर मैं कैसे, और वैसे भी तुम मेरे एग्जाम के लिए कोई सोल्यूशन बताने वाले थे, वो बताओ, ये क्या फालतू की बातें। आदित्य को अच्छी तरह से पता है कि सुनैना को इस वक्त सब कुछ पूरी तरह और ठीक से याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने और सुनैना के प्यार को सारी चीजों से ऊपर मानता है और उसके लिए वो कुछ भी नहीं सुन सकता, सुनैना के मुंह से भी नहीं। आदित्य ने अपने दोनों हाथ सुनैना के दोनों गालों पर रखते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, फालतू की बातें सुनैना, सच में तुम्हारे लिए ये सब फालतू की बात है, जबकि असल में मुझसे ज्यादा तुम इन सब के बारे में बात करना पसंद करती हो, और अभी मेरी आंखों में देखकर बोलो, यही बात तुम्हें अपने दिल की धड़कनें तेज होती ना महसूस हो तो फिर बताना। आदित्य को इस तरह से नाराज देखकर सुनैना को इतना तो समझ आ गया कि उसने अनजाने में ही सही कुछ तो गलत बोला है और आदित्य का दिल भी दुखाया है, लेकिन जो उसने कहा वो भी झूठ नहीं था। आदित्य के टच करते ही सुनैना को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई और साथ ही आदित्य की आंखों में नजर आया अपने लिए बेपनाह प्यार। बढ़े की उसे याद नहीं, लेकिन फिर भी जो जज्बात उसे अपने सामने नजर आ रहे हैं उनसे वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई और आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, और अभी एग्जाम है, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। सुनैना इस बार काफी नरमी से बोली तो आदित्य ने भी उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया और बोला, हाँ तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और तुम्हारी हेल्थ, मैं बस तुम्हें पहले की तरह बिल्कुल ठीक देखना चाहता हूँ, नहीं देख पा रहा हूं मैं तुम्हें इस तरह से खुद से दूर होते हुए। ना बोलते हुए आदित्य वहां से उठकर खड़ा हो गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वो काफी इमोशनल हो गया था ये बात बोलते हुए, और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जो वो नहीं चाहता था कि इस वक्त सुनैना भी देखें। आदित्य को इस तरह दूसरी तरफ घूमते हुए देख सुनैना ने अपने मन में कहा, क्या हुआ अब इसे और मैंने ऐसा क्या कहा? लेकिन इसने जो कुछ भी कहा, क्या सच में मैं इसके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? लेकिन सीधे नहीं करता था और जब देखो तब मुझसे दूर ही भागता रहता था, मतलब पहले या फिर अब, पता नहीं क्या बदल गया है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा ठीक से, मैं पागल हो जाऊंगी। इतना बोलते हुए सुनैना ने दोबारा से अपने सिर पर हाथ रखा क्योंकि उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और तभी आदित्य का मोबाइल फोन रिंग हुआ तो अपने मोबाइल फोन की तरफ देखने के लिए वो पीछे मुड़ा लेकिन उसका ध्यान सुनैना की तरफ गया जो कि अपना सिर पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान सी वहां पर खड़ी है। उसे इस तरह से देखकर आदित्य कॉल रिसीव करना भूलकर सीधा सुनैना की तरफ आया और बहुत ही आराम से बोला, क्या हुआ सोना? सोना तुम ठीक हो ना? प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक है और तुम्हें जितना याद है ना उतना ही सच है और कुछ भी नहीं, प्लीज तुम इतना मत सोचो। इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना को खींचकर अपने गले से लगा लिया तो सुनैना को एकदम से ही बहुत कुछ अजीब सा महसूस हुआ और आदित्य का इस तरह से टच और हक करना उसे बहुत ही अच्छा फील हुआ और उसे एक सुकून मिला। उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स उसे महसूस हुई जो कि शायद उसे आज तक कभी भी महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये सब कुछ उसे बहुत ज्यादा पहचाना सा लगा और कुछ देर के लिए उसकी सारी टेंशन सरदर्द भी जैसे बिल्कुल खत्म हो गया। आर यू ओके? क्या हुआ? कुछ तो बोलो प्लीज, उसी तरह से गले लगे हुए आदित्य ने थोड़ा पैनिक होते हुए पूछा तो फिर सुनैना भी हल्के से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ मैं। उसकी बात सुनकर आदित्य को भी बहुत सुकून महसूस हुआ और उसने सुनैना को कसकर खींचते हुए अपने और करीब कर लिया और फिर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुनैना चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई और चुपचाप ही उसकी बाहों में उसके गले लगकर खड़ी रही क्योंकि इस तरह से वो काफी कुछ भूल गई थी। आदित्य के उस एहसास में वो खुद को भी महसूस कर पा रही थी और अपने लिए उसका बेपनाह प्यार भी। शतक। अक्षत का बंगला।
अक्षत अजय के साथ वहां से निकल चुका है और घर में इस वक्त नैना और विवान बचे हुए हैं। वो दोनों अपनी मूवी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगले हफ्ते उन दोनों की मूवी भी रिलीज होने वाली है और अक्षत की मूवी उनकी मूवी से एक हफ्ते पहले रिलीज होनी है। तुम्हें क्या लगता है नैना, हमारी मूवी भाई की मूवी से अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर खराब? विवान ने ऐसे ही क्यूरियस होते हुए नैना से एक सवाल किया। उसकी बात पर नैना ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है विवान, और वैसे भी हमारा कॉम्पिटिशन अक्षत से नहीं है, हमें तो खुद अपनी जगह बनानी है ना इस इंडस्ट्री में। अक्षत तो पहले ही इतने ऊंचे मकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं और कई लोग फिर भी नहीं पहुंच पाते। विवान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाभी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं और आपके लिए तो आपका हस्बैंड वैसे भी वर्ल्ड का बेस्ट एक्टर और बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था अपनी मूवी को लेकर एक्साइटेड होना। वैसे भी भाई की मूवी पर इस वक्त मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, जब से उस रागिनी ने वो न्यूज़ मीडिया में फैला दी है कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है तब से भाई को काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रहा है। विवान जो कुछ भी बता रहा है वो सब नैना को भी पहले से ही पता है, अक्षत से रिलेटेड सारी न्यूज़ पता रखती है, स्पेशली जब से ये बात बाहर आई है। ये रागिनी नाम का ग्रहण पता नहीं कब हटेगा हमारी ज़िंदगी से, कितनी अच्छी हाइफ थी उसके आने से पहले हम दोनों की, सब कुछ इतना सॉर्टेड चल रहा था, ऊपर से हिम्मत तो देखो उस लड़की की, पता नहीं किसके बच्चे को अक्षत का बच्चा बता रही है, इतनी चालाक है कि आज तक उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला हमें। रागिनी के नाम पर नैना को गुस्से में देखकर विवान ने उसे समझाया, नहीं मिला तो अब मिल जाएगा, वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते भाभी, एक न एक दिन तो वो पकड़ में आ ही जाता है और वैसे भी आज इस बार हम लोगों ने जो प्लान बनाया है ना वो ज़रूर काम करेगा। विवान की बात समझते हुए नैना ने अपना सिर हिलाया, आई होप सो, वो प्लान काम करे और जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म हो और इससे अक्षत के करियर पर कोई असर ना पड़े, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान से। विवान ने भी उसकी तरफ देखकर काफ़ी सीरियस होते हुए कहा, और भगवान आपकी सुन लेगा क्योंकि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थनाएं कभी भी बेकार नहीं जाती हैं भाभी, और रही बात करियर की तो वो आप जब सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाओगी ना तो फिर एक मूवी भाई के साथ साइन कर लेना और आप दोनों की जोड़ी तो वैसे भी हिट होगी, बस सारा करियर फिर से लाइन पर आ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर नैना जो इतनी देर से परेशान थी और टेंशन की वजह से उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और आईब्रो भी अप थी, उसका चेहरा अब नॉर्मल एक्सप्रेशन में आया और होठों के कोने हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने भी विवान की बाह पर हल्के से मारते हुए कहा, इतनी भी दूर का नहीं सोच लेना चाहिए और वैसे भी अभी सिर्फ पहली फिल्म रिलीज होने वाली है, कोई सुपरस्टार नहीं बन जाऊंगी मैं इससे ही। क्रमशः